Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bombay mein Ganapati Mahotsav bahut zor zar se karte hain. और ये गणपति महोत्सव जो कर्म है वह भगवत संबंधी कर्म होने के कारण और गणेश महोत्सव गणेश पर्व के निमित्त से किया जाने वाला कर्म होने के कारण यह नैमित्तिक कर्म हो गया, क्योंकि नित्य तो महोत्सव तो कर नहीं सकते हो। साल में एक बार उस तिथि से उस तिथि तक करने वाला कर्म को क्या कहते हैं? नैमित्तिक कर्म। उस निमित्त से किया जाने वाला कर्म नैमित्तिक कर्म। उस कर्म का प्रयोजन होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, परमात्मा प्रसन्न हो जावे। लेकिन आजकल विकार यहां तक विकृति आ गई कि वो अहंकार के लिए वो सब कर्म होते हैं। हमारे गणपति महोत्सव कितना बड़ा है, कितने लोग आकर देख रहे हैं, कितना बड़ा है, पंडाल कितना बड़ा बनाया, उसने कितना हमने कितना, उसने कितना खर्च किया हमने कितना खर्च, उसने कैसा डेकोरेशन किया हमने कैसा डेकोरेशन किया। और शायद इन्हीं कारण से वह नैमित्तिक कर्म भी चित्त शुद्धि का कारण न बनकर कई बार बवाल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। चित्त शुद्धि का कर्म कहां मारपीट का कारण ही नहीं है, लेकिन वह भी तत् के लिए न होकर अहम के लिए होने के कारण वह भी दुख का कारण, बंधन का कारण, अशांति का कारण हो जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समित्य योगाम। इसलिए निवृत्ति जरूर करनी चाहिए, दिन में कुछ समय निवृत्ति के लिए कर्म करो, प्रतिदिन अभिषेय अभ्यास करो। ये कर्म निवृत्ति का है, ये मुझे करना ही है, अनिवार्य है। इस रूप में जब कर्म करते हैं तो वही परमात्मा के लिए अर्पण होगा। संसार के लिए तो बहुत कर लिया बाबा, अब कब तक करोगे संसार के लिए? क्या नहीं किया तुमने संसार के लिए, बोलो, विचार तो करो, क्या नहीं किया? बहुत कुछ किया, तो अब भी और करना बाकी है क्या? यदि ऐसा मानते हो कि अभी करना बाकी है तो फिर वो पूरा तो कभी होगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये सत्संग सुसंग तो ये सब मरने के समय में करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हारे मरने का समय कब है, तुम्हें पता है तुम्हारे मरने का समय कब है, एक्सपायर्ड डेट तुम्हारी है? दवाई की तो एक्सपायर्ड डेट है, तुम्हारी एक्सपायर्ड डेट है? बोले ये तो पता नहीं है। हमने कहा जब पता नहीं है तो क्या पता कि आज ही तुम्हारा वो मरने का दिन हो, हो सकता है अभी मरने का दिन हो, और तुमको कैसे पता है कि आज मरने का दिन नहीं है, कल मरने का दिन नहीं, परसों मरने का दिन नहीं है, कैसे पता है? नित्यम सन्निहितम मृत्युर धर्म चरम, शास्त्र ने यही कहा है। धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में तुम्हें इसी तरह आचरण करनी चाहिए कि मृत्यु बिल्कुल मेरे सिर में बैठा हुआ है। इस तरह तुमको अध्यात्म की निवृत्ति साधना करनी चाहिए। तत्त्वस्य तत्त्वेन समित्य योगम, तत्त्वस्य जीव तत्त्वस्य तत्त्वेन समित्य, तब जीवात्मा को परमात्मा के साथ योग एक कर दो। तो ये करने की उपाय क्या है? जैसे इस घड़े का पानी आधा था, उस घड़े में पानी आधा था, दोनों घड़े में आधे आधे पानी थे, तो बोले दोनों पानी को एक कर दो। कैसे करोगे? बोले इस घड़े का पानी ले जाकर उस घड़े में डाल दिया तो दोनों पानी एक हो गए, है ना? तत्व ही न तत्व। इसी तरह इस उपाधियों में जीवात्मा था, उस उपाधि में परमात्मा था, ईश्वर था। उपाधि के चलने के कारण ईश्वर भी अपूर्ण था, उपाधि के चलते जीव भी अपूर्ण था। तब अब क्या करो, तो बोले दोनों की उपाधि हटा दो और दोनों को एक जगह मिला दो, तो दोनों ही पूर्ण हो गए। जो श्रुति ने बार बार कहा है कि पूर्ण मद अपूर्ण मिलो, पूर्ण हो गए। उपाधियों से अपूर्ण था, उपाधि हटते ही पूर्ण हो जाता है। इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति, इसी को भागत्याग लक्षणा कहते हैं। जीव तत्व को परमात्मा तत्व के साथ एक कर दो। वो कैसे करेंगे, तो बोले भागत्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा, जात अजात लक्षणावृत्ति के द्वारा, तत्तेन तत्त्वस्य तत्तेन समेत्य योगम। योग शब्द का अर्थ होता है एक होना, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ मिलान हो, उसी का नाम योग है। नहीं महाराज, वो तो बहुत कठिन है, और तो सब ठीक है। वो जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की प्रक्रिया शब्दों से तो समझ में आ जाता है, शब्दों में समझ में आ जाता है, अर्थ में वो जीवन में नहीं आ पाता। वो बड़ा कठिन है महाराज। यदि तुम उस नहीं कर सके, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अष्टावक्र गीता में ही ये बात आई है, तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुल। यदि पहले से ही जिसकी चित्त बहुत शुद्ध हुआ है, निर्मल है, निष्काम कर्म ईश्वर उपासना आदि के द्वारा जिसका चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गया, निर्दोष हो गया है, ऐसे व्यक्ति को तो तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल। एक बार श्रवण मात्र, महावाक्य के श्रवण मात्र से ही वह उसकी बुद्धि निराकुल हो जाती है, यानी उसमें स्थिर हो जाती है, निराकुल, उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है। बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको? शुद्ध बुद्धि वाले को। लेकिन यदि जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार सुनने पर भी वह बुद्धि निराकुल नहीं हो पा रही है, तब फिर तुम आगे की साधना शुरू करो। आगे की साधना क्या करें महाराज? तो सहदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने इस मंत्र की इतनी सुंदर व्याख्या की है, बड़े सिस्टम, बड़े प्रक्रिया से कर दी है। हालांकि उस तरह की व्याख्या शंकराचार्य जी भाष्य में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया के अनुसार इतनी सुंदर व्याख्या हुई है। एके ना, तब फिर पहले एक साधन को अपनाओ। एके ना, उस एक का अर्थ क्या किया? एके ना गुरु उपसाधने ना, पूरी तरह तुम गुरु के उपसाधन हो जाओ। अब ये निश्चय कर लो कि बस गुरु के अलावा मुझे और किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मरे तो गुरु के सान्निध्य में, जिए तो गुरु के सान्निध्य में, रोए तो गुरु के सान्निध्य में और हंसे तो गुरु के सान्निध्य में। गुरु के अलावा और किसी से कोई संबंध ही नहीं है। एक ही ना गुरु उपसदने ना। हम रोते हैं, कभी पति के सामने रोते हैं, कभी पत्नी के सामने, कभी बच्चों के सामने, कभी मां के सामने, कभी बाप के सामने, कभी डॉक्टर के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने। और के सामने रोने की क्या जरूरत है? पीड़ा है, व्यथा है, वेदना है, समस्या है, तो गुरु के सामने रो। गुरु कुछ समस्या समाधान खोजेगा, बताएगा, कोई युक्ति बता देगा, कोई चाबी उसके पास है कि वो फट से फिट कर देगा। और के सामने रोकर हंसेंगे, और के सामने हंसोगे तो तुम्हारी उपहास और करेंगे। और गुरु उपसदनेन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। ये गीता का श्लोक गुरु उपसदन का स्वरूप है। एकेन बस, खाली गुरु के अलावा कहो कि महाराज बहुत बार सुने फिर भी नहीं चित्त में स्थिर हो रहा है, बुद्धि निराकुल नहीं हो पा रही है। भगवान जैसे भी हो, जीवात्मा परमात्मा की एकता का अनुभव मुझे करना ही है, नहीं छोड़ना, पीछे लग जाओ, भूत जैसे लगता है उसी तरह पीछे लग जाओ। एक ही ना बोले, बहुत बार गुरु के साथ भी सुने हैं, गुरु के द्वारा महावाक्य सुना, गुरु ने अनेक बात कही है, उपाय बताई है, फिर भी काम नहीं कर रही है, तब फिर और कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए द्वाभ्याम गुरु और ईश्वर की उपासना फिर शुरू करो। इसका मतलब है कि तुम्हारे चित्त में चंचलता है, तुम्हारी चित्त में चंचलता होने के कारण गुरु का उपदेश भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। चंचलता और स्थिरता यदि चित्त हो जाता तब, चंचलता से स्थिर हो जाता तो स्वच्छ और स्थिर दोनों चित्त होता तो श्रवण मात्रेण बुद्धि निराकुल हो जाती, और बुद्धि स्वच्छ भी नहीं है, चंचल भी है, तब फिर वह श्रवण के द्वारा बुद्धि निराकुल नहीं होती। तो बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करने पर भी वह बुद्धि निराकुल नहीं हो पा रही है, तब फिर ईश्वर की उपासना शुरू करो, क्योंकि ईश्वर उपासना का फल है चित्त की स्थिरता, निष्काम कर्म का फल है चित्त की स्वच्छता। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त भूय, ये चित्त की स्वच्छता के लिए है। निष्काम कर्म चित्त की स्वच्छता निर्मलता का कारण बनता है, ईश्वर उपासना निर्मल चित्त को स्थिर करने में कारण बनता है। द्वाभ्याम गुरु और ईश्वर, जैसे कि इसी श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम में आता है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यै ते कथिता ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी ईश्वर में जितनी निष्ठा है उतनी ही निष्ठा गुरु में है, और जिसकी गुरु में निष्ठा है उतनी ही निष्ठा ईश्वर में है। कभी कभी आजकल अध्यात्म में भी कुछ विकृतियां आने लग गई है, ऐसे ऐसे संप्रदाय विकसित होने लग गए, तो वह केवल गुरु की महिमा का तो गान कर देते हैं, ईश्वर की महिमा का गान ही नहीं करते। सब कुछ गुरु है, गुरु को छोड़कर और किसी के चिंतन ही न करो, गुरु के बोले ईश्वर का जप तो कर, बोले जरूरत ही नहीं है, राम का भजन तो करना है, बोले राम का भजन किस लिए करना है, राम से भी बड़ा गुरु है, बस गुरु के शरण में गए सारा काम बन गया, राम को पूजने की जरूरत नहीं, पूजा करने की जरूरत नहीं, जप करने की जरूरत नहीं है, व्रत करने की जरूरत नहीं है, बस गुरु। तो वो उदाहरण क्या देते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये प्रमाण है। वही ब्रह्म के गुरु की पूजा हो गई तो ब्रह्म की पूजा अपने आप हो गई, गुरु की पूजा हो गई तो महेश्वर की पूजा अपने आप ही हो गई, गुरु की पूजा हो गई तो विष्णु की पूजा अपने आप ही हो गई। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, इसलिए बस गुरु की शरणागति, गुरु के पास जाना, गुरु की सेवा, सब कुछ गुरु, गुरु के अलावा अपने दिमाग में और कुछ आने ही नहीं देना। इस प्रकार के उपदेश करने वाले संप्रदाय हमको सुनाते हैं, वो हमारे समाज में विद्यमान है, जो ईश्वर की उपासना का निषेध करके केवल गुरु की उपासना की बात करते हैं। यदि कोई ऐसा कहता है तो ये उपनिषद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध उपदेश है, शास्त्र विरुद्ध उपदेश है। ये बात अलग है कि तुमने पहले ईश्वर उपासना पूर्ण करके चित्त को बहुत निर्मल और शांत किया है, तब तो तुम गुरु के पास जाओ, गुरु काम कर देगा सब कुछ, लेकिन तुम्हारे चित्त को शुद्ध करने का काम गुरु का नहीं है। तुम्हारे भाड़ा मांजने के लिए, बर्तन मांजने के लिए बैठा है गुरु, है? कहो कि मेरे चित्त भी तुम ही साफ कर देना और उस चित्त में आत्मज्ञान भी तुम ही दे देना, कि क्या तुम्हारे बर्तन मांजने के लिए है गुरु, तुम्हारा चित्त साफ करने के लिए तुम्हारे गुरु बैठा है? बोले हम तुम्हारे शरण में आ गए हैं, जो कुछ करना है वो कर लो। तुम्हारी मूर्खता को भी कैसे हटाएंगे वो? तुम्हारे चित्त में सारे विकार भरे हैं, गंदगी भरा है, संसार विषय वासना भरे हैं, बोले वो भी तुम हटा दो। फिर तुम क्या करोगे हैं? तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारा कर्तव्य क्या रह गया? बोले हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हम तुम्हारे पास आ गए, जैसे भी हैं तुम्हारे पास आ गए, अब आगे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे द्वार आना हमारा कर्तव्य है, ये इतना ही है, आगे काम तुम करो। ये तो बदमाशी एक्स काले एके न द्वाभ्याम, ये क्योंकि इसी उपनिषद का अंतिम मंत्र है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता यर्था प्रकाशन्ति महात्मना। केवल गुरु में अंधी भक्ति होने मात्र से गुरु के वाक्य उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होते, ईश्वर में भी भक्ति होनी चाहिए। और केवल ईश्वर में भक्ति और गुरु के प्रति नहीं है तो भी उसके अंदर प्रकाशित नहीं होगा। गुरु में और ईश्वर में समान भक्ति होगा तो दोनों को मिलकर जब तुम्हारे चित्त में निर्मल होगा, शांत होगा, तब कथिता अर्था प्रकाश्यन्ते, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश का अर्थ तुम्हारे हृदय में व्यक्त होगा, प्रकाशित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। एकेन द्वाभ्यम त्रिभिः, सम्यखंडन जी महाराज जी ने इसकी इस तरह व्याख्या की है, ईश्वर उपासना और गुरु के सान्निध्य के सेवन से भी यदि अर्थ प्रकाशित नहीं हो रहा हो तो तुम तीसरा विकल्प भी साथ में अपनाना। तीसरा विकल्प क्या है? तो त्रिभिः, तीसरे को जोड़ो, वह है वैराग्य को जोड़ो। शायद वैराग्य की कमी के चलते ईश्वर और गुरु काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। यदि जीवन में तुमने तीसरा जो अंग है वैराग्य उसको पूरी तरह जीवन में धारण कर ली है, तब तो दो तो पहले है ही है, ईश्वर उपासना और गुरु का सान्निध्य है ही है। वैराग्य की कमी के कारण अर्थ प्रकाशित नहीं हो रहा था, वैराग्य को भी तुम दृढ़ रूप में साधन के रूप में अपना लो तो वैराग्य भी हो, ईश्वर भी लगे और गुरु भी लगे, तो मजाल है कि तुम्हारा काम न बने है? और तीन तीन लग रहे हैं फिर भी तुम्हारा काम न बने, ये तो संभव ही नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा है, वैराग्य भी हो, ईश्वर उपासना भी हो और गुरु सान्निध्य भी हो, गुरु उपशक्ति भी हो, ये तीन तीन लग जाए फिर भी तुम्हारा काम न बने। महाराज कभी कभी तो बनता नहीं है वो, कभी कभी तो बनता नहीं है, जैसे कि अभी नहीं बन रहा है। अब काम न बने, ये तीन के माध्यम से भी काम न बने तो फिर क्या करें महाराज? तो उपनिषद ने कहा तब तो फिर अष्टवीर, इन तीन के साथ आठ को और जोड़ दो। बोले क्या है? बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसका मतलब तुम पहले स्टार्ट के साधक हो, ये सब किए बिना तुम सीधे गुरु के पास आ गए, गलती किया, रास्ता भूल गए, तो अष्टवीर बा। जीवन में हताश नहीं होना है, जीवन में हताश नहीं होना, ये वेदांत की प्रक्रिया रही है। पहले साध्य तत्व का निरूपण करने के बाद फिर साधन का निरूपण करना, ये वेदांत का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि पहले साधन किया, वर्णन किया, फिर साधन से धीरे धीरे साध्य में। सामान्यतया व्यक्ति तो यही कहते हैं कि पहले नीचे से ऊपर चढ़ना चाहिए, और वेदांत सीधे ऊपर से और नीचे उतार रहा है। तत्वेन तत्वस्य योगम, ये सबसे ऊंची चीज है, अंतिम स्टेज है वो, जीवात्मा परमात्मा की एकता, ये अंतिम स्टेज है, अंतिम भूमिका है। तो बोले कि उस भूमिका में तुम नहीं पहुंच सकते हो तो फिर गुरु की उपशक्ति और नीचे की हो गए, वो भी नहीं है तो ईश्वर उपासना, वो भी नहीं है तो फिर वैराग्य साधना अपनाओ, वो भी नहीं है तो अष्टांग साधना अपनाओ। बोले अष्टांग साधन भी कर लिया महाराज, फिर भी फल नहीं प्राप्त हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है। तो बोले घबराना नहीं, काले न चैवात्म गुणेश सूक्ष्म ही, ये साधन भी काले न धीरे धीरे पकेंगे। आज ही बैठे योग में और आज ही तुमको फल मिल जाए, इसलिए समय लगेगा, अभ्यास करते जाओ। काले न पच्यते, आत्मगुणे ही, तुम्हारे आत्मिक गुण का विशेष रूप में समय समय में विकसित हो जाएंगे। आत्मगुण क्या है? यहां आत्म शब्द से लिया, अंतकरण, अंतकरण के गुण विकास होंगे। अष्टांग योग साधना के बाद धीरे धीरे तुम्हारे अंतकरण में आत्मगुण, अंतकरण के गुण विकास होंगे। क्या है आत्मगुण? अमानित्वम अदम्बिन्तुम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम चैव, यही तो है आत्मविनिग्रहम। ये गुण विकसित होंगे, अमानित्व तुम्हारे जीवन में विकसित हो, अदम्बित्व विकसित होगा, अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम, ये सब आत्मगुण हैं, तुम्हारे अंतकरण के सद्गुण हैं। तो अष्टांग योग से क्या होगा? दुर्गुण हटते जाएंगे, सद्गुण विकसित होते जाएंगे, तब फिर वैराग्य बढ़ता जाएगा, तब ईश्वर उपासना के चित्त शांत होता रहेगा, तब गुरु प्रसति और महावाक्य श्रवण, और श्रवण के बाद फिर तत्त्वस्य प्रत्येन योगम। ये प्रक्रिया है साधक के लिए। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।